शांति। एक ब्राह्मण आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ऊपर जाती है तो पहली मुलाकात चित्रगुप्त से होती है। तो चित्रगुप्त उसके लेखा जोखा देखते हैं और उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो उस ब्राह्मण आत्मा की होती है। चित्रगुप्त कहता है कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण नियम का उल्लंघन किया है। तो बोले वो कौन सा नियम उल्लंघन किया उसकी भी वीडियो दिखाते आपको। तो उसको वीडियो दिखाया कि वो बाबा कमरे में बैठा है और झुटके ले रहा है अमृत वेले। तो वो ब्राह्मण भी होशियार रहा तो थोड़ा चालू किस्म का ब्राह्मण था, उसको धर्मराज बाबा के सामने प्रेजेंट किया गया। चित्रगुप्त तो बोला चलो तुम्हारा निर्णय धर्मराज बाबा के सामने होगा। तो ले गया, वो भी चालू ब्राह्मण था तो उसने बोला कि मैंने कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, जो भी हुआ वो प्राकृतिक नियम था। तो बाबा ने पूछा कैसे प्राकृतिक नियम था वो, बाकी लोग जागृत थे, तुम बस सिर लटकाए हुए बैठे थे उधर पे, तो तुमने तोड़ा ना नियम। बोले नहीं, वो प्राकृति का नियम था क्योंकि उधर पे मेरी गर्दन नीचे जा रही थी, वो गुरुत्वाकर्षण था, ग्रेविटी का नियम काम कर रहा था, उधर मेरा कोई नियम थोड़ी था, वो तो प्राकृति का नियम है। तो धर्मराज बाबा भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्या डिसीजन लें, वो भी सही कह रहा है। तो कहते ठीक है तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, आओ ताज ले लो। तो जैसे ही वो सर ताज लेने जाता है धर्मराज बाबा के सामने, वैसा ही एक व्यक्ति की उसको आवाज़ सुनाई देती है ब्राह्मण आत्मा को कि चलो आगे सर को इधर सोने आए हो क्या। तो तब वो होश आता है और देखता है कि मैं तो बाबा के कमरे में हूँ और जो सारी घटना हुई वो स्वप्न में हुई, वास्ताई ले मिलने वाली थी। तो कहानी तो काल्पनिक है लेकिन हम भी कभी कभी ख्याली पुलाव इतना बना लेते हैं, मन में इतनी कल्पनाएं कर लेते हैं कि जो कल्पना मात्र में होती हैं स्थूल में नहीं हो पाती हैं। तो आज 21वां दिन है राजयुग की प्रयोगशाला का। बाबा ने कहा से बाबा राजयोग से कहलाते हैं, आज की मुरली में बाबा ने कहा है। तो जब प्रयोगशाला में बैठे हैं तो प्रयोगशाला में प्रयोग ही की जाए तो अच्छा है। ज्ञान तो बहुत तो ना सुनते भी आते हैं। और ब्राह्मण बनने के बाद एक चीज और होता है कि हम भले बात करते हैं सार से, विस्तार से सार की, लेकिन एक्चुअल उल्टा होता है। हम आते हैं जब ब्राह्मण बनते हैं तो पहले हम सार ही में होते हैं, फिर धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। ज्ञान योग, ज्ञान तो ठीक है बढ़ता जाता है, लेकिन योग थोड़ा है वो घटता जाता है। बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान की लवार मारने लगते हैं, और वो लवार स्टार्टिंग में नहीं होती है, जब लंबे समय का अनुभव हो जाता है ब्राह्मण बनने के बाद चलते चलते, जब वो लवार शुरू होती है। मैं फलाना, आज बाबा ने कहा है धारणा का मुख्य सार, पहला पॉइंट, मैं और मेरा शब्द तुम्हारे डिक्शनरी से डिलीट हो जाना चाहिए। वास्तव में दोनों में जब अच्छा होता है तो वो अलग समझ में आता है कि क्या इस मैं में क्या अंतर है, और जो मैं वाला वो वाला मैं होता है वो भी अलग समझ में आता है। तो उसमें वो तो सोचना नहीं पड़ता, दिख जाता है कि कौन सा देह वाला है कौन सा सूक्ष्म है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में एम होता है, एम होता है, एम ए आई एम। तो एक मिनट के लिए सब स्थिर होंगे, और हम जब ब्राह्मण बने थे और उस मार्ग से इस मार्ग में परिवर्तन हुआ, उस दुनिया से इस दुनिया में जब प्रवेश किए, या जहाँ भी जिसने भी जिस लक्ष्य से इस ब्राह्मण परिवार में अपनी एंट्री की, हमारा वास्तव में कोई लक्ष्य हमने रखा है तो उस लक्ष्य को याद करेंगे कि स्टार्टिंग में हमने क्या लक्ष्य लेके इधर आए थे, और अभी तक जितने चाहे 10 वर्ष हो, 10 महीने हो, 10 साल हो, 40 साल हो, 20 साल हो, हम उस लक्ष्य में कितने परसेंटेज तक पहुँचे हैं उसको हमें देखना है। तो एक मिनट में ये तो कठिन है, लेकिन उसको याद करना है कि कितने परसेंटेज तक हम पहुँचे हैं, और वास्तव में वो लक्ष्य हमें याद है आज भी या नहीं। शांति। तो वैसे इतनी जल्दी तो इतनी यात्रा देखना वो है, लेकिन एक हम तो यात्रा में कभी कभी चलते चलते कई मार्ग भटक जाते हैं तो वो लक्ष्य भी भूल जाता है। बाबा कई बार कहते हैं जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, तो वास्तव में हमारे लक्षण सुधर रहे हैं। तो प्रयोगशाला में हम भी अपने टॉपिक पे रहें, तो कि प्रयोगशाला में एम आज की मुरली में जो पहला टाइटल में लाइन है, तो बाबा ने सबसे पहला शब्द ही तुम्हारा कर्तव्य याद दिलाया है। क्या है हमारा कर्तव्य? अंधेरे से सोजरे में ले जाना है, लेकिन हम खुद अंधेरे में ना फंसे हों। आज दुनिया की वर्तमान परिस्थिति देखो तो बहुत दुर्लभ हो गई है, और हमें तो उसका पता ही नहीं है, क्योंकि हम एक कम्फर्ट जोन में हैं, क्योंकि टाइम पे सब चीज़ें हो रही हैं, टाइम पे उठ रहे, टाइम पे सो रहे, टाइम पे मिल रहे, तो कोई फिकर नहीं है निस्फिकर। दुनिया में खाते समय कोरोना, चलते समय कोरोना, उठते बैठते एक परिवार में लोग लॉकडाउन में भी हैं तो यही चर्चा चल रही है उनके बीच, इर्द गिर्द घूम रही, जो हम दिन भर में इधर खबर भी नहीं है। लेकिन अब तो ब्राह्मण भी उस चपेट में आ गए हैं, तो जैसे ही देखा जाए तो जैसे ही दादी जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद जो जंप लगी है ब्राह्मण परिवार में जो डेली न्यूज आ रही हैं, तो स्पीड जो परिवर्तन हो गया है, तो बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया हुआ है, बहुत गहरी बात बाबा ने बोली उस मुरली में। अभी न रोगी रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना, अति में जाना है ना, अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है, जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकालें तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, भ्रम में जी रहे थे हम लोग, कहाँ आत्मा परमात्मा कोई नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे, जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी, कहाँ नजर जाएगी। अभी अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। भवन का कल शाम को अचानक पता नहीं कौन बीती बिसरा कौन व्यक्ति फोन कर दिया, ऐसा टॉपिक मिलने के पहले ही होता है। बैठे थे बाबा की कुटिया के झूले में और अचानक फोन आया, न्यूज़ तो कोई कभी बहुत दिन से देखा नहीं, कभी बहुत साल हो गए ना न्यूज़ पढ़ी ना देखी। अचानक उस व्यक्ति ने बोला कि अभी हाल ही में घटना घटी, बोले कि हम ही एक पेशेंट को कोविड से ग्रसित ले गए, तो बोले पहले तो प्राइवेट में इधर उधर ले गए तो सारी जगह बेड फुल, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए तो रूल्स रेगुलेशन करते करते उसने दम एम्बुलेंस में ही तोड़ दिया मरीज ने, और अब इसका तो कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं। बोले डेथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका गवर्नमेंट को भी रिकॉर्ड नहीं जा रहा, तो बोले गांव के बाहर ही चार लोगों ने उसका क्रियाक्रम किया, बहुत मोर है। तो कह रहे वो जो व्यक्ति था बहुत गांव में वो था, तो कई प्राइवेट वाले लोगों ने बोला कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वही खरीद लो, एम्बुलेंस खरीद लो। तो उस समय वो बता रहा था कि उस समय 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे भी काम नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति हो गई, पैसे काम नहीं आ रहे हैं। इवन जो बाबा कहता है ना कि संबंध भी काम नहीं आएंगे, तो उसने अपनी ही घटना बताई कि घर के बाजू में एक व्यक्ति ने कोरोना से इफेक्ट होके शरीर छोड़ा, उसके बीवी बच्चे सब ऊपर से देख रहे हैं, और उन्होंने फोन करके जो मुक्ति वाले संस्था हैं उनको बुला रहे हैं, और 2 दिन तक इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इतने लोग मर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो घर वाले लोग भी उस कमरे में नहीं जा रहे, और एक ही घर एक और घर, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तुरंत 5-6 दिन के बीच जो घटे उन्होंने बताया कि जहाँ हम रहते थे एक्चुअल वहीं की वो बता रहे थे कि, तो एक और हुआ कि 7-8 लोग एक घर में सदस्य, सारे लोग शरीर छोड़ दिए एक एक, तो अब उनके घर में सिर्फ उनकी माँ बच्ची थी और एक बहू बच्ची थी, और लड़का बाहर रहता था। अंतिम क्रिया कर्म करने वाला कोई नहीं, डेड बॉडी पड़ी कमरे में एक जगह। और एक और चीज बताई कि ऐसा हुआ कि अकेला बेटा ही है, कोई मोहल्ले पड़ोस वाले भी नहीं आ रहे, और डेड बॉडी को अब अंतिम क्रिया कर्म करना है, कैसे करें। तो लड़का अकेला उस बॉडी को उठा के गार की डिक्की में रख के और शमशान घाट में अंतिम क्रिया कर्म करने लिया। कई और कई जगह ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल वालों ही ने ले जाके इकट्ठे सबको कर दिया, पता ही नहीं चला इधर। और लोग गए भी नहीं, घर के लोग गए भी नहीं, बॉडी टच ही नहीं किया। तो इतनी घटनाएं घट रही हैं और हम इससे बेफिक्र थे। और ब्राह्मणों की देखो तो रेगुलर, आप देखो तो मैसेज आए पड़े हैं रेगुलर, मतलब कोई ना कोई जा रहा है। लेकिन अटैचमेंट जो अभी क्लास में सुना ना अपन, सबसे अब दुनिया में बैराग बढ़ गया, लेकिन ब्राह्मणों में अटैचमेंट देखने को आ रहा है। जो दबा हुआ था ना वो उभर रहा है धीरे धीरे, उभर रहा मतलब निकल रहा है। जो दबा हुआ था, लगता था कि हम बहुत वैरागी हैं, बहुत त्यागी हैं, एक्चुअल में घटनाएं घटी नहीं थी ऐसी, ऐसी परिणामों को देखा नहीं था। इस कारण से बाबा ने कहा हम तुम तो बेहद के वैरागी हो, तो फील होता था। लेकिन जब घटनाएं सुनती है आत्मा, और जब किसी संबंधी के साथ ऐसा होता है, तब तब रियलाइज होता है कि बाबा क्यों कहता है कि अपनापन क्या होता है। जब अपने, जब तुम विश्व को अपना समझोगे, जब उस दुख को फील करोगे, तब तुम्हें पता होगा कि रात की नींद कैसे पिटती है। तो जब ये रात को बहुत सारी चीज़ें सुनी, और उसने लास्ट में एक ही कहा कि कुछ विश्व के लिए करना चाहिए, ऐसा उधर से आप लोग कुछ करो, तब रात भर करवटें बदलते रहे, नींद तो आई नहीं। और जो बाबा का अनुभव है ना कि बच्चों को फिकर, बाबा बच्चे तो निष्फिकर सोते हैं और बाबा को फिकर है, वो शब्द कल रात को फील किया कि बाबा किस उससे बोलता है। जब तक हम अनुभव नहीं करते, हम कितने भी ज्ञान की लवार मान लें, इधर कितना भी भाषणबाजी कर लें, दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, कुछ भी जरूरत ही नहीं है। जो न्यूज हमारे काम की ना, कोई आके सुना देगा। हम 2012 दिल्ली गए थे, कोई प्रोग्राम था ऐसे ही चले गए थे, तो उधर एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि हमने आज तक बचपन से कभी भी न्यूज़पेपर न पढ़ा है न सुना है, लेकिन आज का भी जो टॉप न्यूज़ है वो हमको पता है। बोले फालतू के काम योगी को करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू लोग इस काम के लिए भी कई ब्राह्मण आत्माएं हैं जो रिसर्च करके बैठी हैं। आप मिलेंगे, वो आपको सारी जो टॉप हेडलाइन है दिन भर की वो बता देंगे, कितने कल कितने केस हुए, वो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो समेटने की जरूरत है, अब हमें समेटने की जरूरत है। तो आज बाबा ने कर्तव्य हमें याद दिलाया है कि हमारा है अंधेरे से सोजरे की ओर। तो पहले तो हमें अपने आप के अंधेरे मिटाने होंगे। हम बहुत सारे अंधेरे में, जो अभी इतनी बार चर्चाएं हुई कि सारी चीजें दबी हुई हैं, जो भी आप हमने सोचा कि ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, वास्तव में व्यस्त लाइफ के कारण वो चीज़ें, उनको हमने ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं, उनको टच नहीं किया, उनके ऊपर टॉर्च नहीं घुमाया, और वो दबी रह गई सबकॉन्शियस माइंड में। और जब हम एकांत में जाते हैं तो उन चीज़ों को जब टच करते हैं, तो टच बस करने से एक बहुत बड़ा, अगर ऐसा बवंडर जैसे कहते हैं ना ज्वालामुखी, वो निकलता है कि अंदर ये है। मतलब अभी तक हमारी दृष्टि को बाहर तरफ थी, तो बाहर की चीजें देखते थे, और जब अंदर झांकना शुरू करते हैं तो वो जो ज्वालामुखी जैसा लावा निकलता है ना, वो निकलना शुरू हो जाता है। तो अब तो कारोबार खुद के ऊपर करने का है, और जैसे कहते हैं कि समय कैसे, दुनिया में एक अंतिम संस्कार ही था जो बहुत संस्कारों से किया जाता था, आज उस संस्कार का भी संस्कार हो गया है, और वो भी विधि परिवर्तन हो गई है। लोग जो लोग दावा करते थे कि भाई मरने के बाद लोगों की भीड़ होनी चाहिए हमारे पीछे, शान सौगत से जाने चाहिए, एक समय हमने ये देखा कि आरतियों को बड़े सहनाई के साथ भी ले जाते थे, जो जो जिस लेवल का होता था उतने अपने हिसाब से करते थे। कितनी चीज़ें होती थी कि पैसे जो भी थे वो लुटाते, आज तो सहनाई बजाने वाला तो छोड़ो, खुद के जो जो कहते थे, जो वादा करते थे कि मैं तुम्हारे साथ ना जन्म जन्म का रिश्ता है, जन्म का तो छोटो शमशान घाट तक का रिश्ता भी खत्म हो गया। अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई लोग ले जाए क्रियाक्रम। कहाँ गया जो अभी बात सुनी लव लव? अगर ज्ञान नहीं है जिस प्रेम में, वो प्रेम है ही नहीं। अटैचमेंट तो कहो कि उधर ज्यादा होता है जहां सारे लोग ज्ञानी हैं एक ही परिवार में। सबसे ज्यादा जो गहरा अटैचमेंट है इन लोगों के साथ ज्यादा होता है। जो स्वार्थ जो कहते ना था, एक पति ने, एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि भाई अगर दो किसी में खुदा ना खास्ता मर गई तो तुम क्या करोगे? बोली अरे भगवान कैसी बात करते हो तुम, ऐसी बात बोलो ही नहीं। फिर नहीं ऐसा ही कि तुम बाद में क्या करोगे? तो बोला कि उसने पत्नी के मुंह में उंगली रख दी, बोली ऐसा बोलते क्यों हो, बहुत प्यार है हमको तुमसे, हम तो देख नहीं सकते। फिर भी बोले एक अनुभव, बोले मैं तो पागल हो जाऊंगा, पति बोलता है मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा, पत्नी ने बोला तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? फिर बोले पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो दुनिया में जो लव है, लव है जो दुनिया का, वो एक्चुअल में लव है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ तुमको ज्ञान देने, और ज्ञान से तुम परिवर्तन होते हो, नई दुनिया में जाते हो। तो दुनिया में लोगों को अब समझ में आ रहा है, और जबकि बाबा 84 की जितने भी साल हो गए, गला फाड़ फाड़ के शांत हो गया बाबा भी। वो समझ गया कि इनको जब दिखेगा तब सुधरेंगे, और वास्तव यही है कि जब तक बीतती नहीं है जब तक बदलता नहीं है व्यक्ति। कितना भी हम सुना ले सुन ले, तब अनुभव गहराई में तब होता है जब परिस्थितियां घटती हैं, घटनाएं घटती हैं। तो ये था कर्तव्य, हमें याद है हर पल रहना चाहिए। तो एक प्रैक्टिस एक मिनट की करेंगे कि प्रैक्टिकल राजयोग की प्रयोगशाला में प्रयोग ही ज़्यादा हो तो अच्छा है, सुनना सुनाना तो चलता ही रहेगा। तो एक मिनट का कोई भी अलार्म रखे, एक मिनट का टाइमर सेट करना है, और एक मिनट में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। एक मिनट में सिर्फ अपनी सांस को काउंट करना है कि एक मिनट में हम कितनी सांस, क्योंकि हम बाहरी जगत में बाहरी नॉलेज में इतने उलझ गए हैं कि अपनी किसी से हमने अचानक कल पूछा कि आप कितनी एक मिनट में कितनी सांस लेते हो, तो बोला आज तक पता नहीं। हम अपने बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, हम भले ज्ञान की बात कितनी भी कर लें लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें इस देह के बारे में नहीं पता। इसमें असीम शक्तियाँ हैं इस आत्मा के अंदर। आज बाबा ने एक खास बात बोली है कि आत्मा स्टार मिसाइल है, उसमें 84 का पार्ट नूंदा हुआ है, इसको समझो गहराई से। एक मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। स्टॉप। तो पता चला कितने ली आपने? आपने 12, आपने 25, आपने आपने पीछे योगी कबूतर कबूतर 34 सांस लेता है एक मिनट में, मामूली चिड़िया 30, बदख 21, बंदर 30, मनुष्य 12 साधारण, सुअर 36, कुत्ता 28, बिल्ली 24, बिल्ली 24, बकरी 24, घोड़ा 16, मेंढक 3 सांस। मेंढक कहते हैं कि 110 वर्ष तक जीता है और 5 महीने तक बिना खाने बिना भोजन के जमीन के अंदर रह जाता है, 110 वर्ष तक, और बिना श्वास बिना भोजन के जीता है। और कहते हैं अष्टांग, जो पतंजलि का अष्टांग योग योग रहस्य एक बुक है, उसमें बताया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधना समाधि, तो उसमें बताया है आसन में कि योगी 3 घंटे 36 मिनट एक ही आसन में बैठ जाए तो आसन जय, और कहा गया कि 2 घंटे 36 मिनट तक बैठ स्थिर बैठना, न हिलना न डुलना, इस अवस्था में बैठ गया तो वो प्रवेश किया है सर योग मार्ग पे, प्रवेश किया है, अभी साधक बना है। और इस अवस्था में पद्मासन का रहस्य बताया कि योगी जैसे ही इस मार्ग में बढ़ता है, जैसे ही हम स्थिर होने लगते हैं, हमारे श्वास का लेवल घटने लगता है, श्वास का लेवल घटने लगता है, भूख ह्रास होने लगती है, भूख मतलब कम होने लगती है। योगी के लिए बताया है कि ऊंचे स्थान में बैठता है, उधर पे एनर्जी जो है वो हमारी बहुत कम यूज होती है, एनर्जी जितना लेवल है चाहिए उतनी भरपूर मात्रा में ऑटोमेटिक जाती है, पानी के किनारे बैठना चाहिए, बहुत सारे आसन ऐसे बताए जिससे हम मन को एकाग्र करना। और बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में एक बहुत एक छोटी सी लाइन और बहुत गहरी थी जो बोली कि आत्मा की प्यास शांति की है और एकाग्रता, आत्मा में जितनी एकाग्रता होगी उतनी खुशी शांति स्वतः आती जाएगी। तो योग की प्रयोगशाला में आज फिर नेक्स्ट में बाबा ने एक और बात याद दिलाई है, तो ये तो योग की बात हुई कि हमारी श्वास का लेवल घटता जाएगा, एक अवस्था ऐसी भी आएगी थी जितनी स्थिर होते जाएंगे हम, संकल्प भी हमारे स्थिर होते जाएंगे, और एक्चुअल जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा श्वास जो है वो कम हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके श्वास से भी पहचान, एक भोगी जब वासना में तृप्त होता है व्यक्ति तब उसका श्वास का लेवल अलग बढ़ जाती है, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है उसका श्वास का लेवल अलग होता है, जब एक आप आनंद शांतिमय आप अनुभव किएंगे, जब योग में हम बैठते हैं तो धीरे धीरे मन जब स्थिर होने लगता है तो हमारा श्वास लुप्त हो जाती है, हमें इसका भी ख्याल नहीं होता, भूल जाते हैं। तो ये कुछ प्रयोग हमें करते रहना है ऑब्जर्व अपने को देखने के। फिर अगला नेक्स्ट है कि बाबा ने कहा आज के बाबा शब्द यूज करते रहना है, जो ज्ञानी आत्मा है वो अपना क्या करेंगे, तो बाबा से 3 चीजें होंगी, एक तो अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा याद रहेगा, और एक और चीज होगी, क्या होगी अब वो आप लोग बताएंगे। 3 बातें बाबा कहने से 3 बातें होंगी, सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म हो जाएगा, वो दुनिया के लिए कहा है, और जब बाबा शब्द कहोगे तो एक ही बाप याद आएगा। तो ये थी कुछ बात, तो अभी समय कम है तो इसमें एकाग्रता के लिए शरीर की चीजें जो बहुत सारी चीजें, जब अभी 21 दिन की भट्टी हुई तो 21 दिन की भट्टी का हो या जब से मधुबन आए हैं, जो बहुत सारे प्रश्न थे एक ही चीज में, और एक ही बहुत बड़ी आसक्ति थी, वो थी भोजन। तो लास्ट जो चला पूरा भोजन के ऊपर कारोबार, तो इतनी सारी चीजें उथल पुथल हुई, ऊपर नीचे हुई, तो कुछ एक बातें हैं। पहले एक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद भोजन के ऊपर थोड़ा कुछ अनुभव है और बाबा ने क्या कहा है और लोग क्या, ब्राह्मण परिवार क्या कहते हैं उसके ऊपर, वो उसके कुछ अनुभव देखेंगे। पहले एक मिनट फिर अलार्म लगाएंगे। तो एक मिनट जो बाबा ने पहला मैसेज दादी गुलजार के द्वारा, जो पहला मैसेज जो बाबा ने आज यूज किया है मुरली में, कि हमें आत्मा योग अग्नि की बात करी है, और बाबा ने बोला है देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति की एक परिभाषा दी है बाबा ने। कई लोग ने बहुत रॉन्ग मैसेज और कमेंट किए, शायद ब्राह्मण है आत्मा है जो भी हैं, कि अभी फिलहाल ये क्या चल रहा है ना। तो उसमें बाबा ने पहला मैसेज जो दिया है देही अभिमानी स्थिति की जो परिभाषा बताई है, बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल ना मन में ना तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। बच्चों, अभी देही अभिमानी बनो, बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। स्टार्ट, न मन की हलचल न तन की हलचल। तो लास्ट बचा है, बस 4 मिनट बाकी हैं। तो लास्ट है अष्टांग योग में प्रत्याहार का, बहुत जो पढ़ा था, जब बहुत योगी का एक भोजन के ऊपर किसी ऐसी संस्था ने या भगवान ने तो बोले ही हैं बहुत सारे, तो हम तो उस बात पे यकीन करते हैं जब सुनते थे कि भाई भोजन के ऊपर इतना क्यों बोला जा रहा है, आखिर फोकस इतना भोजन के ऊपर क्यों है। जब मुरलियाँ ढूंढी, जब मुरलियों को ध्यान किया कि बाबा ने इसके ऊपर तो बहुत विशेष बातें बोली हैं भोजन के ऊपर, तो एक मुरली में बाबा ने कहा है 83 की, 21 दिसंबर 83 की मुरली है, जिसमें भोजन के ऊपर बाबा ने विशेष बातें कुछ बताई हैं। बच्चे, सदा व्याधि से मुक्त रहना है, बीमारियां आपको न घेरें, उसके लिए परहेज, TJBR एक फॉर्मूला है। बाबा ने परहेज बताई है, ताजा फल खाते रहो तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे, बाबा के साथ का अनुभव था जैसे। तो बाबा ने फिर बताया, सब ताजा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल करके नहीं खाओ, ये खाने के नियम है। 4 वाक्य हैं, उथल पुथल कर दिया पूरे। अब रूप परिवर्तन करके मतलब क्या होता है, जला करके मतलब क्या होता है, भून करके के मतलब क्या होता है, ताजा खाओ सब। तो बाबा ने भोजन के ऊपर बहुत सारी ऐसी बहुत सारी मुरलियाँ हैं जो बाबा ने भोजन के ऊपर बोली हैं। लोगों के कई जो कमेंट होते हैं, या तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ उन्होंने मुरलियाँ जो बाबा की वाक्य है उस रीति से नहीं पढ़ा है, या समझा नहीं है, या तो अध्ययन ही नहीं किया है, और कमेंट पे कमेंट करना शुरू होते। तो ऐसे लोगों की हमें ध्यान भी नहीं देना है, लेकिन भोजन पे बहुत अटेंशन बहुत ज़रूरी, अब वर्तमान समय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वायरस है वो जो भी बीमारी हमारे शरीर से ही फैलती है, बीमारी हमारे शरीर के द्वारा ही फैलती है। पहले तो इसका मार्ग क्लियर करना चाहिए। एक नेता भाषण देता है और कई अटैक नेताओं के ऊपर होते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी जो होती है, जो सारे रास्ते होते हैं ना नेता तक पहुंचने के, उधर बैरियर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। हम भी ओम शांति भवन में जब एंट्री होती है लोगों की तो चेकिंग करते हैं ना, और बहुत सारी जगह चेकिंग होती है कि कोई बम बारूद तो नहीं लेके जा रहा। तो सबसे पहले मार्ग पे ध्यान दिया जाता है। तो हमारा मार्ग मुख्य है भोजन वाला, जिससे ही ये सारी चीज़ें जानेगा, लंग्स पे जो इफेक्ट हो रहा है, वायरस है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी उसी मार्ग से जा रही हैं। तो उस पे ही हमें सावधान रहना है, क्या खा रहे हैं उस पे अलर्ट रहना है। और भी बहुत सारे अनुभव हैं, चीज़ें हैं, बाबा ने तो बताया है। एक मूली है 24 जनवरी 70 की, खाने से शक्ति नहीं आएगी, बाबा ने स्पष्ट कहा है, खाने से शक्ति नहीं आएगी। भोजन खाने खाना और चीज़ है, हजम करना और चीज़ है। खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनता है। कहते हैं कि जब हड्डी का फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर से प्लास्टर करता है, बाकी शरीर ऑटोमेटिक उस हड्डी को जोड़ने का काम करता है। जो हमारे अंदर वाइटल एनर्जी है, सीमेंस पावर है, एक डॉक्टर हमारे अंदर ऑटोमेटिक बैठा हुआ है जो निरंतर कार्य कर रहा है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारा खुद का स्वयं का अनुभव है, हमने आज तक 2012 के बाद कोई भी टैबलेट नहीं ली। फीवर आया, कुछ भी आया, सारी चीज़ें आई। अभी इवन बाबा पहाड़ी में गिरे भी, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, पहले तो लोगों ने बोला, क्योंकि गिरे इतनी दुर्लभ स्थिति में थे कि सिर्फ एक शब्द या गिरे जब, तो सिर्फ बाबा निकला और हमको दर्द भूल गया, खुशी हुई। और इस गिरने घटना होने के बाद भी उस जो एक घंटे का जो योग किया बैठ के उधर, और उसके बाद जो जब इस रिटर्न आए बॉडी में, तो फील हुआ कि चलना ही दुर्लभ हो गया। तो बाबा बाबा कवर करके कैसे भी नॉर्मल स्थिति में चल के आए, लेकिन उस दिन जो उसके बाद जो स्थिति शुरू हुई कि रात भर पैर में दर्द और तमाम चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें फील हुई कि बाबा कहता है ना कि दर्द में याद करके दिखाओ। उस समय जो याद थी, जो दर्द का, जो दर्द के समय याद की जाती है, प्रैक्टिकल जो भी है, तो वास्तव में हमें जब हमारे साथ कोई घटना हो तब वो याद होती है, जब वो याद होती है। तो बाबा ने ये कहा। तो एक और बात और कही, बहुत सारी बातें कही हैं, तो टाइम कम पड़ जाता है। मुरली में बहुत सारे प्रैक्टिस थी, बहुत सारे ड्रिल थी आज, वो सारी ठीक है, तो कल करेंगे। तो आज का होमवर्क जो है कि दिन भर हमें एक अभ्यास करना है कि सिर्फ एक जो भी स्थान है, आप कुछ भी देख लो, आप सिर्फ आत्मा हो और इधर प्रकाश में है आत्मा। एक एक मिनट का, एक घंटे में एक मिनट का ही अभ्यास करना है कि आप सिर्फ प्रकाश को महसूस करना है, हमें आत्मा है और वो प्रकाश में है स्थिर, उस स्थिर और स्थिर करना, कोई भी संकल्प नहीं देखना है। संकल्प आएंगे उनको रोकना भी नहीं है, आने देना है, पोस्टपोन। जैसे हम कोई काम को करने के लिए पोस्टपोन करते हैं ना कि बाद में संकल्पों को देखेंगे, तैसे पोस्टपोन करते जाना है। और एक मिनट में, बस एक मिनट का अभ्यास करना है एक घंटे में, बाकी जो आप करते हैं वो करते रहना, जे बस इतना अटेंशन देके कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, स्थिर हूँ, और प्रकाश के गर्भ में, ये समझ लो सूरज के नीचे जो लालिमा होती ना, सूरज के नीचे जब सूरज सनसेट होता है तो एक लालिमा होती है, उसमें स्थित हूँ। उसको सिर्फ महसूस करना है हमको, मैं उसमें स्थित हूँ, क्या अनुभव होता है फिर वो देखना है। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद करेंगे।